सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो, जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले हो। सितारे कितने प्यारे लगते हैं, तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो। सितारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे गाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो, वो कौन है? आकाश के सितारे, और हम है धरती के सितारे। उन सितारों और हम सितारों में क्या अंतर है? वो है प्रकृति की सत्ता, ये है परमात्म सत्ता। वो है जड़, ये है चेतन। ये है धरती पर, वो है आकाश में। वो क्या करते और ये क्या करते? वो रात को दिन नहीं बनाते। ये सितारे रात को दिन बनाने वाले सितारे। तो सदा अपने आप को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो, चमकती हुई ज्योत।
एक रात को दिन करते
कौन? हम
ये धरती
नहीं कर सकते। जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले हो। सितारे कितने प्यारे लगते हैं, तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो। सितारे भी भिन्न भिन्न प्रकार के गाए जाते हैं। कौन से प्रकार है?
सफल सारे सितारे, उम्मीदवार सितारे,
और साधारण सितारे,
पुच्छल
तारे। एक है साधारण सितारे, दूसरे है लकी सितारे, और तीसरे है सफलता के सितारे। तो आप कौन से सितारे हो? सभी सफलता के सितारे हो। सफलता मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है? कंबाइंड कम रहते हो, इसलिए सफलता भी कम मिलती है। क्योंकि जब सर्वशक्तिमान कंबाइंड है तो शक्तियां कहाँ जाएगी? साथ ही होगी ना। और जहां सर्वशक्तियां है वहां सफलता ना हो, यह संभव है? तो सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम है। यह मेहनत करने के बाद सफलता होती है, क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हो। ये सितारे ज्ञान की रोशनी देते हैं, वो सितारे स्थूल रोशनी देते हैं। वो टिमटिमाते सितारे हैं, ये सदा जगमग ज्योति है। सदा सर्वशक्तिमान के आगे, सॉरी मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती रहती है। जैसे सम्मान में स्थित होने वालों के आगे सम्मान आगे पीछे घूमते रहता है, उसी तरह यहाँ बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो कंबाइंड रहते हो या कभी कंबाइंड रहते हो, कभी माया अलग कर देती है। जब आप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ना हो सकता है क्या? कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं पार्टनर? ये तो अविनाशी साथी है, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? वो कभी मम्मा ने प्रेम बहन जो है ना देहरादून के, उस उसको एक काम दिया था, उसको फोटो का जो एल्बम था उसमें सभी के फोटो लगे हुए थे यज्ञ के, तो उसमें से उन उन लोगों को छांटना था कि जो यज्ञ को छोड़कर चले गए तो वो निकालने लगी कि जो जो अभी नहीं है, जो पहले थे और नहीं है, एक 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 फोटो निकालने लगी। तो निकालते निकालते उसको संकल्प आया कि इतना प्यारा परिवार, इतना श्रेष्ठ परिवार, ऐसे परिवार को छोड़ के ये लोग कैसे चले गए। तो उसने पूछा मम्मा से कि ऐसा क्यों, कितना श्रेष्ठ परिवार है उसको भी छोड़ के क्यों चले गए। तो मम्मा ने कहा जिनका अपने ऊपर अटेंशन कम रहता है या देही अभिमानी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ कम रहता है उनको जरूर माया किसी ना किसी तरह से मार करती है और अपने साथ ले जाती है। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अशरीरीपन का। अगर वो पुरुषार्थ कम है तो जरूर कहीं ना कहीं से माया आएगी, अलबेला बनाएगी और ले जाएगी साथ में। तो कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं, और ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है। ये साथी कभी भी धोखा नहीं देता, उन साथियों का भरोसा नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना, जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है उतनी खुशी होगी। तो खुशी रहती है, किसी ने कहा बहुत रहती है, ढोल बजते हैं इतनी रहती है, ढोल तो बजते हैं पर कभी कभी स्वर कम हो जाता है ढोल का, स्वर मध्यम। तो बढ़ती रहती है या कम और ज्यादा होती रहती है, कोई बात आती है तो कम होती है, कम होती है थोड़ी तो कम होती है, फिर सोचते हैं क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन बात ही ऐसी हो गई ना, कितनी भी बड़ी बात हो लेकिन आप कौन हो, बात के बाप रचता हो, मास्टर रचता हो, बात तो रचना है। तो रचना, रचता बड़ा होता है या रचना बड़ी होती है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर तुम सब कौन हो, सफलता के सितारे हो, परमात्मा सत्ता रात को दिन करने वाले, रात में चमकने वाले, विश्व को ज्ञान की रोशनी से चमकाने वाले, वो प्रकृति की सत्ता है, वो रात को दिन नहीं करते, वो आकाश में रहते हैं, वो स्थूल है, तुम चैतन्य हो। तो सफलता के सितारे अर्थात सदा सफलता, उसके लिए बाबा ने कहा किसे मिल सकती है, जो जिनके पास, जो तो कंबाइंड रहते हैं, जिनका साथी बाप है और जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, तीन बातें, जो सदैव मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे और पीछे घूमती रहती है, उन्हें सफलता के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सफलता उनके पास आती है। तो कंबाइंड सदा रहते हो या कभी कभी अलग हो जाते हो, जैसे लौकिक में कोई अच्छा साथी मिलता है तो छोड़ते हैं क्या, तो यह साथी कैसा है, अविनाशी है। यह साथी कैसा है, सदा साथ देने वाला है। यह साथी कैसा है, निस्वार्थ। यह साथी कैसा है, सर्वशक्तिया, उसमें समाई है, संपन्न है, भरपूर है, तो कभी धोखा देने वाला नहीं है। वो साथियों का कोई भरोसा नहीं है, आज प्यार करेंगे कल धोखा भी दे देंगे, ऐसे लगेगा कि इनसे ज्यादा हमें प्यार कोई करता ही नहीं है, और कल छूमंतर प्यार, अल्पकाल का प्यार है। मझधार में छोड़कर चले जाएंगे सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। یہ نشہ اور خوشی ہے. جتنا نشہ ہوگا کہ سوئم بھگوان میرا ساتھی ہے اتنی خوشی رہے گی. کوئی ہو نہ ہو سنسار میں, سب نے چھوڑ دیا پرنتو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا, تو خوشی رہتی ہے. بڑھتی رہتی ہے یا کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ کوئی بات آتی ہے تو کم ہوتی ہے, تھوڑی تو کم ہوتی ہے, پھر سوچتے ہیں کیا کیا کرے, ویسے تو ٹھیک ہے لیکن بات ہی ایسی ہو گئی. کتنی بھی بڑی بات ہو لیکن ماسٹر رچتا ہو, اور بات رچنا ہے تو رچتا بڑا ہوتا ہے اور رچنا بڑی ہوتی ہے. کیا بابا پوچھ رہے ہیں؟ کبھی کوئی بات سے گھبرانے والے تو نہیں ہو؟ وہاں جا کر کوئی بات آ جائے تو گھبرائیں گے نہیں. دیکھنا وہاں جائیں گے تو مایا آئے گی, پھر ایسے تو نہیں کہیں گے کہ میں نے تو سمجھا نہیں تھا, ایسے بھی ہو سکتا ہے. نئے نئے روپ سے آئے گی, پرانے روپ سے نہیں آئے گی, پرانے روپ میں نہیں آئے گی. پھر بھی بہادر ہو, نشچے ہے کہ انیک بار بنے ہیں, اب بھی ہے اور آگے بھی بنتے رہیں گے. نشچے کی وجہ ہے. ماسٹر سرو شکتیمان کی سمرتی میں رہنے والے کبھی گھبرا نہیں سکتے. بابا یہاں بھے کی بات کر رہا ہے کہ کبھی کوئی بات میں گھبرانے والے تو نہیں ہو. ڈر دو پرکار کے ڈر ہے, ایک ہے باہر کا ڈر, ایک ہے اندر کا ڈر. کوئی چھرا لے کے کھڑا ہو جائے وہ ہے باہر کا ڈر, جس سے آتما بھیبھیت ہوتی ہے, پر اس سے بھی خطرناک ایک دوسرا ڈر ہے. یہاں کارن ہے, کچھ ڈر ایسے اکارن ہے, اس کا کوئی کارن نہیں ہے, وہ ادھک خطرناک ہے, وہ اور گہرے میں ہے, جو ہے نہیں پرنتو وہ من میں ہے. ایسے بھے ہیں بہت سارے بھے, ایسے بھے ہیں کہ جو آتما کو گرا دیتے ہیں. یہاں بابا باتوں کی بات کر رہے کہ مایا جو ہے نئے نئے روپ میں آئیں گی, پرانے روپ میں نہیں آئے گی. جس کا ہمیں ابھیاس ہے وہ روپ میں نہیں آئے گی, جن کا ابھیاس بالکل نہیں ہے وہ روپ میں آئے گی. پھر بھی بہادر ہو بابا کہہ رہے, نشچے ہے کہ انیک بار بنے, اب بھی ہے اور آگے بھی بنتے رہیں گے. نشچے کی وجے ہے ہی, تو وجے کا آدھار نشچے, وجے کا آدھار ماسٹر سرو شکتیمان کا سمان, وجے کا آدھار کمبائنڈ, وجے کا آدھار سدا ساتھ ہے, وہ ساتھی ہے سدا کا. یہ ساری باتیں اگر ساتھ میں ہیں تو وجے ہے. پانڈو کی وجے کیوں ہوئی؟ کیونکہ دھرم ان کے ساتھ تھا, اور دھرم کہاں تھا؟ جہاں بھگوان ہے وہاں دھرم ہے, تو دھرم کی سدیو وجے ہے. تو بابا کہتے کوئی بھی بات میں گھبرانے والے تو نہیں ہو. منشیہ بھیبھیت ہوتا ہے بہت ساری باتوں سے, جو باتیں اوپر سے نہیں دکھتی ہے پرنتو ایک سب کانشیس مائنڈ میں بھے ہوتا ہے. جیسے میری بدنامی تو نہ ہو جائے, کوئی میرے بارے میں کچھ کہے تو نہیں, یہ ایک اندرونی بھے ہے, بھیبھیت رہتا ہے وہ. اس کو لگتا ہے کہیں یہ تو نہ ہو جائے, ہوا نہیں ہے پرنتو کلپنا کرتا ہے کہ یہ تو نہ ہو جائے, یہ تو نہ ہو جائے, ایسے تو نہیں ہو جائے, ایسے اگر ہو گیا تو کیا ہوگا, سب نے اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. ہاں بہت, جس کو جس سے جس کی جس سے مرتی ہوتی ہے اس کو اس چیز سے بھے ہوتا ہے. جس کی اگر پانی سے مرتی ہوئی ہو تو بچپن سے پانی کا بھے ہوتا ہے. کوئی بہت بڑی کھائی سے نیچے گر کر اگر مرتی ہوئی ہے تو اس کو اونچائی سے بھے ہوتا ہے. ہر ویکتی کے من میں پرنتو یہ بھے سمایا ہوا رہتا ہے. ایک ویکتی تھا جس کو کسی جوتیشی نے کہہ دیا, جس کا جوتیشی پر بہت زیادہ وشواس تھا, اس کو اس نے کہا کہ ایک سال کے بعد اس تاریخ کو اتنے بجے تمہاری مرتیو ہے. یہ کھیل سب کانشیس مائنڈ کا ہے, اس نے اسے سویکار کر لیا انتر من نے, اور اس نے اپنی تیاریاں چالو کر دی کہ مرتیو ہوئی تو کیا ہوا, انشورنس کر دیا ہے, سب پراپرٹی اسٹیٹ سارا. اور جیسے جیسے وہ تاریخ نزدیک آتی گئی اس کا من جیسے تیار ہونے لگا اس چیز کے لیے, اور جیسے ہی وہ دن آیا اور وہ تاریخ آئی اس کی مرتیو ہو گئی. کوئی بیماری نہیں تھی, पर वो दिन रात वो बात उसके अंतर मन में समा गई। और एक बताते जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक सराय, सराय मतलब होटल मोटेल क्या कहते हैं उसको, उस तरह का इन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वहां एक रात रुका, वो भोजन किया, सुबह सुबह जाकर निकल गया वहां से, एक रात ही रुका वहां पर। एक साल के बाद वापस आया वहां पर उस होटल में या धर्मशाला में, रैन बसेरा इन जिसको कहते हैं। तो वहां का जो मालिक था वो कहता है आप जिंदा हो? तो बोलता है क्यों, आप एक साल पहले यहाँ आए थे ना? हाँ मैं तो आया था। एक साल पहले आपने जो यहाँ भोजन कराया था उसमें सांप गिर गया था, पूरा जिंदा सांप, और जितने चार लोगों ने, पांच लोगों ने खाया था, जो चार लोग जो दूसरे थे वो तो तुरंत मर गए, और आप अब तक जिंदा हो?
सुनते मर गए।
इतना सुना और गिर गया। और उसने कहा अरे सुनो वो तो एक साल हो गया, अभी एक साल कहा, वो तो गया। तो किसने मारा उसे? डर। कौन मारता है? डर ही मार देता है व्यक्ति को, इतना वो अंदर, उसका कोई संबंध ही नहीं है अभी एक साल का। वो तो अच्छा होता, उसे कहते कि आप जल्दी जल्दी सुबह सुबह निकल गए थे, बाकी वो चार तो गए, ये अब गया। तो डर ऐसी चीज है कि एक पुरुषार्थ ये है कि हमें अपने डर को ढूंढना है कि मेरे अंतर मन में कहां कहां डर समाया हुआ है, किस किस चीज से हम भयभीत होते हैं। कोई चलो आतंकवादी बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो शायद ब्राह्मण नहीं घबराएंगे, वो तो पता है वहां पे याद करेंगे आत्मा हमारा हमारा अविनाशी है ये वो सब, वहां पे भी भूल सकते हैं। परंतु उससे भी बड़े जो भय है वो कुछ और है भय, वहां पर भी वो जो बाहर का भय है वो भी, वो कोई छुरा लेके खड़ा है वो छुरे की वजह से भय नहीं है, भय तो पहले से है, वो तो उस समय केवल प्रकट हो रहा है, वो खाली प्रकट हो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, वो भय तो अंदर ही समाया हुआ है, हमें पता ही नहीं वो भय है। परंतु हर आत्मा एक भय के साथ जीती है, मृत्यु का भय होता है हर एक को, इस देह से इतना लगाव है कि इस देह को छोड़ना नहीं चाहती आत्मा, बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि आत्मा इस देह से सब कुछ भोगती है तो उसको उस देह से बहुत लगाव होता है। इसके लिए कहा गया दो प्रकार की गति है, एक एक भोगी आत्मा जब शरीर छोड़ती है, वो ऐसा कहते हैं कि कौन आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कितना समय के बाद दूसरा शरीर लेती है, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना, ज्यादा समय किस आत्मा को लगता है नया शरीर लेने के लिए, किसको लगता है? बराबर, दो तीन प्रकार की आत्मा, एक है उत्कृष्ट आत्मा है, एक है मध्यम आत्मा, एक है निकृष्ट आत्मा है। जो निकृष्ट आत्मा है और जो उच्चतम आत्मा है उनको शरीर लेने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनको अपने लेवल का गर्भ ढूंढना होता है। जो निकृष्ट लेवल की आत्माएं हैं उन्हें भी तुरंत गर्भ नहीं मिलता है, उनको ऐसा गर्भ चाहिए माँ बाप का, ऐसे माँ बाप चाहिए कि जो बड़े जन्म जन्म से बहुत पापों का बोझ है वहां पर, तो वैसा उसे ढूंढना पड़ेगा। और जो महान आत्माएं हैं उन्हें भी ऐसा ही माँ बाप का गर्भ ढूंढना पड़ेगा, हजारों माँ बाप और हजारों गर्भ उसको दिखते हैं मृत्यु के समय, वो वहां से चुनाव करती है, चयन करती है कहां जाऊं, तो ऐसे घर पे वो जाती है। क्या फिक्स होता है? अगर हिटलर की आत्मा जो है, अभी हिटलर की आत्मा वो आत्मा है कि जिसने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार दिया, ऐसी 1 करोड़ लगभग, अभी ऐसी आत्मा जब जन्म ले रही होगी तब उसे बहुत बड़ा चुनाव करना पड़ेगा, किसके घर जाऊं। ऐसे साधारण आत्माओं के माँ बाप के घर नहीं जाएगी वो, ऐसी आत्मा है कि जिनके जन्म जन्म के बहुत सारे पाप है वहीं वो जाएगी, और वहीं से वो जिंदा होगी, वहीं से उसका जन्म होगा बड़े, और क्योंकि उसने सबको पीछे छोड़ दिया, वो चंगेज खान जो भारत में आया, या मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गजनवी, ये सबको पीछे छोड़ दिया, ऐसी तरकीब निकाली लोगों को मारने की, एक चैम्बर में 5,000 लोगों को रखो, बटन दबाया और खलास, कुछ भी नहीं, रक्त की एक बूंद भी नहीं, हवा सीधा वेपर, اتنے لوگوں کو اس نے مارا. تو یہ کوئی ایسی جو آتما ہے اس کو ٹائم لگتا ہے. ویسے ہی جو مہان آتمائیں ہیں, جو شریشتتم آتمائیں ہیں, ان کو ایسے ماں باپ ڈھونڈنے پڑے گے کہ جو بہت پنیہوان ہے, بہت شریشت ہے. تو یہ ہے. تو اس میں بھے کی جو بات ہے, تو ایسی جو آتما ہے مطلب, اور جو بیچ والی جو آتما ہے ان کو وہ مطلب ان کو بہت ایزیلی اویلیبل ہے کئی سارے. ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. جو نکرشت ہے ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا, جو شریشتتم ہے ان کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا اپنے لیول کی ماں باپ دیکھنے کے لیے. تھوڑا سا ریٹ پھر وہ کتنا وہ پتا نہیں. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ آتما پرویش کر جاتی ہے, پریت آتما ہے, کس میں پرویش کرتی ہے. ہاں یہ پوائنٹ تھا بتانے کے لیے کہ یہ جو آتما شریر چھوڑتی ہے پھر بھٹکتی رہتی ہے, تو کیا یہ آتما کسی اور شریر میں پرویش کر سکتی ہے؟ اتر کیا ہے؟ ہاں ہم کہتے ہیں نا آتما پرویش کرتی ہے. ابھی یہ آتما کس میں پرویش کرتی ہے پرشن یہ ہے. اگر یہ ایک بھوگی کی آتما ہے, اگر یہ بھوگی کی آتما ہے کہ جس نے شریر سے بہت کچھ بھوگا ہے, تو جیسے شریر چھوڑتی ہے اسوستھ ہو جاتی ہے, اسے شریر چاہیے اور شریر مل نہیں رہا ہے جلدی, تو وہ بیچ میں پرویش کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے جیسے کوئی آتما ہے جو کھان پان میں لپت ہے, اسے بہت کھان پان پسند ہے, اور وہ جیسے شریر چھوڑتی ہے پھر اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ تو وہ شریر ڈھونڈتی ہے کہ اس میں پرویش کرے اور پھر بھوگ بھوگے. تو کس آتما میں پرویش کرے گی وہ؟ جو آتما بھیبھیت ہے ایسی شریروں میں وہ پرویش کرتی ہے, ایسے شریر میں کہ جہاں آتما شریر کی مالک نہیں ہے, جو بھے سے پوریت ہے, جو جن آتماؤں میں بھیبھیت ہے, کمزور آتمائیں جو ہے ان میں یہ آتمائیں پرویش کرتی ہے. کس لیے پرویش کرتی ہے؟ اپنی اچھاؤں کو ترپت کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی اچھائیں شریر سے سمبندھت ہوتی ہے. ابھی کچھ آتمائیں ایسی ہے جو مہان آتمائیں, شریشٹھ آتمائیں, جیسے کوئی دارشنک ہے, چلو گیان میں ہے یا نہیں ہے, پرنتو جس کا چنتن, جس کا آنند وچاروں میں ہے, کوئی کوی ہے جس کا آنند شریر میں کم ہے, وہ شریر سے جیسے باہر نکلتی ہے اسے آنندت ہو جاتی ہو. جو بھوگی آتما ہے جیسے شریر سے باہر نکلتی ہے وہ تڑپنے لگتی ہے, کیونکہ اس کے بھوگ ختم ہو گئے. ابھی اس کے لیے وہ نئی آتما ڈھونڈتی ہے, نیا شریر ڈھونڈتی ہے کہ جس میں وہ پرویش کرے. پرنتو جو دارشنک ہے, جو یوگی ہے, جو تپسوی ہے, جن کا پہلے سے یہ پرشارتھ چالو ہے کہ اس دیہ سے ہم اپرام رہے, جیسے آج وردھان میں کہا نا, اپنے آپ کو یہاں کا سمجھو ہی نہیں, اوپر پرم دھام مہمان, یہ دھرتی آپ, یہ ہمارا نواس تھان ہے ہی نہیں, جن کا یہ پرشارتھ چالو ہے وہ آتما ہے جیسے ہی شریر چھوڑتی ہے پرفلت ہو جاتی ہے, آنندت ہو جاتی ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے, ان کو اچھا نہیں ہوتی ہے کہ میں کسی میں پرویش کروں. پر کیا یہ سمبھو ہے کہ کوئی مہان آتما شریر چھوڑے وہ بھی کسی دوسری شریر میں پرویش کر سکتی ہے کیا؟ کر سکتی ہے؟ ہاں بہت کم, بہت کم, اتنا نہیں جتنا وہ کرتی ہے, بہت کم, کیونکہ یہ شریر نیا شریر لے لیتی ہے. پرنتو ایسی مہان آتمائیں بھی کسی کے شریر میں پرویش کر سکتی ہے. کس لیے؟ کچھ اچھا کاریہ کرنے کے لیے. جیسے بابا سوئم کے لیے کہتا ہے نا, کوئی بچہ بدھو ہے تو میں پرویش کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں. ویسے ہی سمجھو کسی مکان میں آگ لگی ہے, ایک بچہ اندر ہے, سب بھیبھیت ہے, پورا مکان گرا ہوا ہے آگ سے, اور اس کے آجو بازو کئی لوگ ہیں, ایک ویکتی کو نہ جانے کیا سنکلپ آتا ہے اور سیدھا کود پڑتا ہے آگ میں, اور بچے آگ کو بھی بجھا دے اور بچے کو بھی لے کے آ جائے. بعد میں اس سے پوچھتے بھائی تم کیسے کیا؟ بولتے مجھے ہی پتا نہیں میں نے کیسے کیا, میرے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے, مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی آتما پرویش کر جاتی ہے اور وہ کاریہ کر دیتی ہے اس کے دوارا. تو اچھی آتمائیں جو ہوتی ہے وہ بھی پرویش کر جاتی ہے, پر جو بھوگی اور ولاسی آتمائیں ہیں وہ بھیبھیت شریروں میں پرویش کرتی ہے. اس کے لیے بھے سے بہت خطرے ہیں. بھیبھیت رہنے کا یہ ایک سب سے بڑا خطرہ ہے کہ کوئی دوسری آتما پرویش کر سکتی ہے. کس لیے؟ ایسے بابا نے کہا 20-20 10-10 آتمائیں پرویش کر جائے گی. کن پر؟ جو ماسٹر سرو شکتی والے ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے. جو شکتیشالی سومان میں ہے, جن کا پہلے سے ہی اشریری ہونے کا ابھیاس ہے, وہاں کسی اور آتما کی ہمت نہیں اس شریر میں پرویش کرنے کی. जो अपनी देह के मालिक है उनमें आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती है। जो भूत प्रेत आत्मा है उनमें प्रवेश करती है जो अपने देह के मालिक नहीं है। जो परवश है, जो विवश है, माया के अधीन है, विकारों के अधीन है, ऐसी कमजोर आत्माएं जो होती है वहां प्रवेश करती है। परंतु जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है वहां यह सब नहीं हो सकता।
नेपाल की कन्या आई थी छोटी जीती तो उसके अंदर आत्मा होती है, तो उसमें पूछा था उसके अंदर क्यों आती है, बोले अमृत वेले उठती नहीं है। अर्जुन की भी देखी टोली मारती थी आगे
वो ही मतलब सारा वहीं पे आ गए हम। अगर हम भयभीत रहते उसे खतरे कितने सारे हैं, वो खतरे तो पता ही है हमको, जो दृश्यमान खतरे है, ये कुछ और प्रकार के अदृश्य खतरे है कि कोई आत्मा घुस जाए और वो हमारे द्वारा वो सब करने लगे, वो जो उसकी इच्छाएं थी जो अपूर्ण रही उस शरीर में, अचानक शरीर छोड़ दिया, अब उसकी कितनी सारी इच्छाएं थी, ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं, बाबा की
तुझे गीत याद आए चल ना।
तो सभी एवर रेडी हो गए हो या थोड़ा थोड़ा अभी तैयार होना है, कल विनाश हो जाए तो तैयार हो। एवर रेडी की बात बाबा बार बार कहते, तैयार रहना है सज्ज कि सोचेंगे अभी ये करना है, करना था, एवर रेडी हो, संपूर्ण हो गए हो, संपूर्ण बनना है किसी ने कहा, तो एवर रेडी कैसे हुए, बनना है तो देरी है ना, ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएगा, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का अभ्यास। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, हो नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे, इसलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करो। समय पर नहीं हो सकता है, बहुत लंबा समय का अभ्यास चाहिए। तुरंत शरीर एक सेकंड में हो जाना, शरीर और देह से डिटैच हो जाना, ये पुरुषार्थ है। माताओं को विशेष खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए, दुनिया वालों ने जितना गिराया बाप ने ही उतना ही चढ़ा दिया, दुनिया वालों ने ठोकर और बाप ने आकर ठाकुर बना दिया। माताओं को कभी दुख की लहर आती है, अच्छे अच्छे पांडवों को कभी दुख की लहर आती है, अच्छा पांडवों को कभी दुख की लहर आती है, बिजनेस में नौकरी में नुकसान हो जाए, देवाला निकल जाए, तो इतने पक्के हो, क्योंकि निश्चय है अगर बाप के सच्चे बच्चे बने तो बाप क्या खिलाएगा, दाल रोटी खिलाते रहेगा बाप, क्योंकि अगर निश्चय है अगर बाप के सच्चे बच्चे हैं तो बाप दाल रोटी जरूर खिलाएगा। पर ब्राह्मण संतुष्ट होगी दाल रोटी से, जिनको अचार और तड़का और तंदूरी और वो सब खाने की आदत है, बाबा को कहेंगे बाबा दाल रोटी तो ठीक है पर बाकी का क्या, बाबा ने कह दिया इधर मैं दाल रोटी तो दूंगा पर संतुष्ट भी तो होना चाहिए उससे नहीं, परंतु आदत अगर है अच्छा अच्छा माल खाने की तो दाल रोटी तो फीकी लगेगी उस समय, तो अभी से क्या करना है फिर एक दिन सब कुछ मिलेगा एक दिन कुछ नहीं मिलेगा, उसमें भी संतुष्ट रहना ये पुरुषार्थ है। सब कुछ मिल रहा है वो तो अच्छा है, परंतु वो भोग को भोगते भोगते ही भोग की आदत लग जाती है। कल की मुरली में था छोटे बच्चों के लिए, बाबा ने कहा ना आदत अगर छोटेपन में जो आदत पड़ गई वो पक्की हो जाती है बाद में, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अच्छा ही अच्छा आ रहा है, आ रहा ही है आ रहा, तो हम कह रहे हैं हम तो आना सकते हैं, जो आ रहा है वो खा रहा है पर अच्छा ही आ रहा है ये भूल रहे है, और उसकी आदत अंदर ही अंदर बन रही है, और वो जब नहीं होगा तब पता चलेगा, तब कहेंगे अरे अभी क्या, क्योंकि वो जो बात रिपीटेड हो रही है उसकी सूक्ष्म में आदत बनती जा रही है, हमको वो दृश्यमान नहीं है, वो दिख नहीं रही है, इतनी अदृश्य है वो। जब वो नहीं होगा तब महसूसता होती है, जब समय जो सुबह अगर जो नाश्ता मिला वही दोपहर में भोजन के रूप में वही मिल जाए, तो एक दिन ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, सब स्थिर रहेंगे, जो सुबह पोहा था बस दोपहर में भोजन करने गए बस पोहा ही है सामने, तो चिमन भाई ब्राह्मणों की स्थिति कैसी रहेगी,
तो
अच्छा लगे अच्छा अच्छा चलो दोपहर में पोहा शाम को भोजन करने के वापस पोहा ही वही सुबह वाला, अच्छा बहुत बढ़िया, फिर तो पास है आप कोई संकल्प ना चले। जो मिला उसमें नमक ही नहीं है, गए और ढूंढ रहे कहाँ दूसरा तो नहीं है, दो प्रकार वाला बस एक ही दिख रहा है, दूसरा बनाया नहीं है, बस एक ही है। नमक पूछा तो नमक है ही नहीं, तो चुपचाप खा लेंगे या संकल्प चलेंगे? वाह वाह करें, क्या भोजन है, वाह बहुत बढ़िया। तो बाबा दाल रोटी खिलाते रहेंगे, ज्यादा नहीं देगा लेकिन दाल रोटी देगा। चाहिए भी क्या, दाल रोटी ही चाहिए ना, रोटी नहीं तो चावल भी मिल जाएगा। साउथ वालों का प्रबंध हो गया, मतलब चावल मिल जाएगा। इतना पक्का निश्चय है ना,
तीन आइटम तो है
ही।
बहुत ज्यादा जिनकी आसक्ति है भोजन में, बहुत ज्यादा, वो कभी योगी नहीं बन सकते, वो कभी आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। देही अभिमानी अर्थात सबसे बड़ा आकर्षण तो आत्मा को इस भोजन का ही है ना।
अच्छा।
सब कुछ चटपटा खटपटा, वो जब तक नहीं है तो मजा नहीं आता है। अगर गए और कुछ ऐसा दिखा तो मूड ऑफ हो जाता है कई आत्माओं का, भोजन को देखते ही ऐसे लगता है कुछ और बनाए, अभी उदासी अच्छा जाती है एकदम। वो सारी खुशी न जाने कहाँ चली जाती है। इतना पक्का निश्चय, बस ऐसे ही निश्चय में अचल अखंड अटल उड़ते रहो। निश्चय की बात कह रहे बाबा, इतना निश्चय होना चाहिए बाप में कि बाप खिलाएगा। जैसे मम्मा के लिए दिखाया था कि लच्छू दादी जो थी, एक बार उसने क्या किया, कागज में चिड़िया के दो अंडे, चिड़िया ने अंडे दिए छोटे छोटे से, तो एक कागज लिया उसमें वो दो अंडे जमा किए और बाबा के पास लेके आई हिस्ट्री हॉल में। बाबा को दिखाया, बाबा ये देखो चिड़िया ने अंडे दिए छोटे छोटे। बाबा ने कहा अच्छा, मम्मा को बुलाओ। मम्मा को बुलाया, मम्मा आज बाबा तुम्हें अपने हाथ से चिड़िया के अंडे खिलाएंगे, मुंह खोलो। तो मम्मा ने आ किया, बाबा ऐसे डाल रही थे तो बाबा ने कहा बच्ची पास है। वो बात की बात है, वो तो इमीडिएट पेपर आ गया ना, पता थोड़ी था क्या करने वाले, क्यों बुलाया। जब सडनली कोई बुलाए वो तो बात की बात है, अगर हमको पता है कि हाँ भाई ये अंडे वहां है, बाबा ऐसे कर सकता है और मैं आ करूंगी, ये सोच के थोड़ी गए थे। वो तुरंत आना चाहिए वहां पे, वो तो पहले प्रिपरेशन है। बॉस जब बुलाता है केबिन में तो थोड़ा ये रहता है ना, अचानक फोन आ जाए कि तुमको बुलाया है, तो पता नहीं क्या किसने बोल तो नहीं दिया। बहुत सारी बातें होती है जब ऊपर से फोन आता है, तो किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसके लिए बुलाया, तो तुरंत निर्णय निश्चय उस समय फुल। जो भी था वो तो प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, चाहे वो कितनी भी महान आत्मा है पर अगर हमारे सामने वो गलती करती है तो हम उसको भी करेक्ट करने लगते हैं। जैसे और किसी ने उदाहरण दिया है, बाबा एक बार, ब्रह्मा बाबा एक बार, शायद किसका कौन से बहन का मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे टेबल लगा रहे थे, पलंग थे बहुत सारे, एक छोटा पलंग एक बड़ा पलंग, तो बाबा ने कहा कि ये जो छोटा पलंग है इसके अंदर डाल दो। तो वो बहन ने कहा अरे ये पलंग इसमें थोड़ी जाएगा बाबा। तो डाला फिर भी तो गया ही नहीं, तो निकालना पड़ा, तो उसको बड़ी खुशी, देखा बाबा को पता नहीं, मतलब आदर है सम्मान है सब कुछ है, परंतु ये जो बात है, तो ये बात उसने फिर मम्मा को जब बताई तो मम्मा ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत सालिम बुद्धि है कि तुम निर्णय कर सकती हो कि वो उसमें नहीं जाएगा, परंतु फिर भी क्योंकि वो बाबा है। और एक होता है उसने जो भी कहा उसको मानना, फिर अगर वो नहीं जाता तो बाबा खुद ही कहेंगे कि नहीं जा रहा है निकाल दो। तो यहां हाजी के पार्ट की बात है, हाँ मतलब बाबा ने जो भी कहा उसको हाजी करना, क्योंकि वो संपूर्ण है, उसमें ही निश्चय की परीक्षा होती है, वहां पर अपनी बुद्धि वो पता है शायद नहीं होगा। तो ये तो वही वाली बात है ना कि निश्चय चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति है हम उसको बहुत आदर करते हैं, परंतु जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो हमारा अगर वो बार बार ही गलती कर रहा है तो हम अपनी बुद्धि तो चलाते हैं वहां पर, फिर हम सोचते हैं ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। वहां निश्चय डगमग होता है, संपूर्ण निश्चय अर्थात संपूर्ण निश्चय, उसमें कुछ नहीं चाचू कुछ नहीं, जो कहा वो सत्य है, जो जो उसने कहा वही सत्य है, इसके अलावा जो भी संसार में सब असत्य है, यह निश्चय। तो बाबा कहते ऐसा ही निश्चय कैसा हो, अटल अखंड, कभी खंडित ना होने वाला, अक्षुण्य अटल उड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति।